या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो।
शांति। जीवन की इस यात्रा में आंधियां और तूफान आते ही रहते हैं, और ये आंधियां और तूफान हमारे जीवन को परिपक्व बनाते हैं। जिसके जीवन में परिस्थितियां नहीं हैं, विघ्न नहीं हैं, समस्याएं नहीं हैं, तो किसी बड़ी परिस्थिति के आने पर कई बार धोखा भी खा लेते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन को अनेक प्रकार की मुसीबतों से, आंधियों से, तूफान से गुजारा है, वो उतने अनुभवी बन जाते हैं। वो समय आने पर धोखा नहीं खाते हैं, बल्कि उन परिस्थितियों को पार करने की उनके अंदर क्षमता का विकास हो जाता है। इसी तरह से अध्यात्म के पथ पर भी कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, जो हमें परिपक्व बनाते हैं। और आंधियों और तूफान का सामना वही करते हैं जो घर से बाहर निकलते हैं, जो घर के अंदर ही हैं, कमरे में बंद हैं, या साधना के पथ पर जिन्होंने अपनी यात्रा आरंभ नहीं की है, या एक साधारण रूप से ही अपने जीवन यापन में लगे हुए हैं, तो जैसे कि उनका जीवन, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी कमज़ोर रह जाती है। समय आने पर, परिस्थिति आने पर वो कहीं ना कहीं फिर धोखा खा लेते हैं। तो इस 21 दिवसीय भट्टी में हम सब ने देखा कि बहुत सारी ऐसी आसुरी वृत्तियां जिनको संसार ने राक्षसों का रूप दिया है शास्त्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, तो ऐसे अनेक प्रकार की आसुर वृत्तियों से हमारा जीवन भी जो है ग्रसित हो चुका था। लेकिन भट्ठी जैसे एक आईना होती है, दर्पण होती है, अंदर झांकने की, स्वयं को जांच करने की कि हमारे अंदर अभी भी कौन कौन सी ऐसी वृत्तियां हैं जिनके ऊपर पर्दा पड़ चुका हुआ है, पर्दे के अंदर में हैं और हम केवल बार बार से उनको देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं समय आने पर वो परिस्थितियां हमें कमजोर कर देती हैं। और ये हम सब जानते हैं कि अंतिम विजय सत्य की ही होती है। कहते हैं सत्य की नाव हिलेगी डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। उसी तरह सत्य के पथ पर जब हमारी यात्रा आरंभ हो जाती है, परिस्थितियां तभी आती हैं। तो इस 21 दिवसीय भट्ठी में हमने देखा अजामिल से लेकर तो रावण तक की यात्रा के बीच अनेक प्रकार की जो आसुरी वृत्तियां हैं, कैसे कैसे वो हमें प्रभावित करती हैं और उन आसुरी वृत्तियों से हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, उन घटनाओं का हमारे ऊपर क्या असर पड़ा और उन घटनाओं से हमने क्या सीखा, उन घटनाओं से कैसे पार करना है, उन पर विजय कैसे पानी है, ये सब चीज़ें हमने देखी। जिसने भी इस भट्ठी में हम सबको अपने अपने विचारों से अपने अपने सामर्थ्य अनुसार हमको लाभान्वित किया, यदि हमने गहराई से हर एक वक्ता की क्लास को सुना होगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा हमें हुआ होगा। अगर केवल सुना ही है तो भी फायदा जरूर हुआ है, क्योंकि थोड़ा भी व्यर्थ नहीं जाता है। बाबा कहते कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि मन में एक द्वंद्व की भावना बनी रहती है, एक अंदर ही अंदर अंतर्द्वंद बना रहता है, जैसे अंदर ही अंदर युद्ध चलता रहता है। तो वास्तव में हमारी संपूर्णता हमारे अंदर निहित है, वो समाई हुई है, लेकिन उसके ऊपर आसुरीयता का प्रभाव ज़्यादा पड़ गया है। जो देखा किस रूप में, तो जो 21 जो राक्षस थे, चाहे वो अजामिल अर्थात सौंदर्य के ऊपर आकर्षित हो गया, इतने लंबे समय से साधना करने के बावजूद भी वो एक छोटा सा दृश्य देखने के बाद अपनी सारी साधना को दांव पर लगा बैठा और उसका फिर जीवन क्या से क्या बन गया। तो ऐसे हम अपने इस अध्यात्म पथ पर जो हम अग्रसर हैं, अपनी इस यात्रा पर अगर देखें, सभी हम मनोभी हैं, अगर थोड़ा सा भी हम प्रभावित हो जाते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी की देह पर या अपनी देह पर या किसी के सौंदर्य पर, तो हमारा जो विकास है वो रुक जाता है, अध्यात्म का विकास रुक जाता है, हमारी यात्रा थम जाती है। तो हमें स्वयं ही अंदर झांकना है, जांच करनी है, निरीक्षण करना है कि हम आत्म उत्थान की तरफ बढ़ रहे हैं या पतन तो नहीं हो रहा है। जैसे बाबा कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है, ऐसे ये पुरुषार्थ की भी एक एक बूंद धीरे धीरे हमें संपन्नता की ओर लेकर जाएगी, हमें संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचाएगी। आज है ना मुरली में देह अभिमानी बनना बड़ी मंजिल है, ये केवल बाप और परमधाम को याद करो। तो इस मुश्किल बड़े सफर में हमें बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है, बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि बाबा के महावाक्य को हम सहज राजयोग समझते समझते अपने साथ ही कहीं ना कहीं शलाबा धोखा करते रहें। ये तो जब लंबी यात्रा होती है तो माँ बाप बच्चे को कहते हैं बस थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा आ गया, ताकि वो डिसाइडेड ना हो जाए, दिल शिकस्त ना हो जाए। ऐसे ही बाबा इस संगम युग पर हर एक बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, अनेक जन्मों के जो विकारों की जंग आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई है उसको उतारना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, अगर अटेंशन रखते हैं, मर्यादाओं के अनुरूप हम अपने जीवन को हम ढालते हैं, उसी अनुरूप चलते हैं, श्रीमत का पूरा पालन करते हैं, जो भी परहेज है उसका अनुसरण करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये यात्रा सुगम है। अगर थोड़ा सा भी हम किनारे रख देते हैं, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तो यात्रा जैसे मुसीबत भरी लगती है। जैसे स्कूल में टीचर तो सबको एक समान ही पढ़ाता है, कोई सहज रूप से पास हो जाता है, कोई सहज रूप से फर्स्ट क्लास में चला जाता है, कोई फेल भी हो जाता है। वही पढ़ाई कोई कोई बच्चे को आसान लगती है, वही पढ़ाई कोई कोई बच्चे को बड़ा मुश्किल लगती है। जो अटेंशन रखता है उसके लिए सहज है, जो अटेंशन नहीं रखता है खेल पाल में अपने जीवन को गवा देता है, खाने पीने में गवा देता है, इधर उधर घूमने में गवा देता है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से इस अध्यात्म के पथ पर, इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा में अगर हम थोड़ा सा भी अटेंशन रखते हैं तो हमारी जो एडिक्शंस हैं, पुरानी आदतें हैं, उनसे हम छुटकारा सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस भट्टी के सार में ये देखा कि जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियाँ उनसे हम परिचित हुए हैं, इनसे हम पीठ नहीं मोड़ सकते हैं कि ये हमारे अंदर बुराइयाँ नहीं हैं। जैसे बताया अजामिल की बुराई कौन सी थी, दूसरा कौन था, महिषासुर अर्थात मोटी बुद्धि, देह अभिमान की परत चढ़ी हुई है। हम पहले तो यही सोचते कोई था, लेकिन ये तो सारे राक्षस हमारे अंदर ही है। अगर सार रूप में कहें तो हम स्वयं ही हैं वो, हमारे अंदर नहीं, हम स्वयं ही हैं वो। मर्ज हो जाता है। तो ये तो उन शास्त्र लिखने वालों को भी भला जो हमको परिचित कराया कि हम कौन हैं, लेकिन बाबा ने भी हम सबको परिचित कराया। तो जैसे अंदर एक जंग छिड़ी रहती है, जैसे एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, कितने लंबे समय से लड़ाई चलती है, तो पूरे देश का सत्यानाश हो जाता है, जनता को कितना त्रासदी झेलनी पड़ती है, कितना नुकसान होता है। उसी तरह हमारे आंतरिक जगत में भी सारी जो द्वंद्व चल रही है, आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति, इन दो वृत्तियों के बीच जंग चलती रहती है, लेकिन इसके बीच में बाबा हमें ईश्वरीय अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। नहीं तो अगर हम उन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारी जैसे दैवी जो संस्कृति है, दैवी जो संपत्ति है, वो नष्ट हो जाती है, आसुरी वृत्तियाँ हावी हो जाती हैं। तो हमें महिषासुर की तरह मोटी बुद्धि नहीं बनना है। बाबा कहते हैं तुम्हारी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, दिव्य बुद्धि होनी चाहिए, हाँ जी, दूरांदेशी बुद्धि होनी चाहिए, पवित्र बुद्धि होनी चाहिए। बाबा कहते ना शेरनी के बर्तन में ही, सोने के बर्तन में शेरनी का दूध ठहरता है। तो जो हमारा बर्तन है ये कैसा है, बर्तन की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये सारा शेरनी का ही बर्तन बन जाए सारा। तो सोने का बर्तन चाहिए, तो मोटी बुद्धि ना हो। दिन प्रतिदिन ये ज्ञान हमारी बुद्धि को स्वच्छ करता है और धीरे धीरे ज्ञान के मोती ठहरने लगते हैं इसमें। तो हमें उस महिषासुर की तरह मोटी बुद्धि नहीं, जांच करनी है, निरीक्षण करना है, ताकि इस भट्ठी के सार का हमको अनुभव हो कि हमारी बुद्धि दिन प्रतिदिन मोटी बुद्धि हो रही है या सूक्ष्म की तरफ जा रही है, हम सूक्ष्म रूप से अपनी कमजोरियों को पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं। मैंपन का गला काट देना है, महिषासुर अर्थात मैंपन का गला काट देना है। फिर धुंधुकारी था, धुंधुकारी पहले कंस, कंस का वध, तो कंस जो सत्ता का लालच था, सत्ता के लालच के लिए अपनों को भी मौत दे देता था, जो सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता के ऊपर पूरा अपना ही कब्जा करना, उससे हाँ जी अहम, तो कितना सत्ता का हमारे ऊपर भी ऐसा ना हो कि उसकी तरह हम अपनों का ही गला घोट दें, अपनों का तो छोड़े अपना ही गला ना घोट दें कहीं, अपनी ही हम हत्या ना कर दें, आत्महत्या अर्थात देह अभिमान में रहना अर्थात आत्महत्या, हाँ जी स्वयं पर अपकार करना आज के मूल्य में। इसलिए बाबा कहते अपकार नहीं, स्वयं का उपकार करो, बाप का भी अपकार करते हैं, बाप का अपकार करना अर्थात बाप की शिक्षाओं को नज़रअंदाज करना, ये भी बाप का जैसे अपकार करना है। तो ये सारे कंस के संस्कार हैं, उसने किसका वध किया, अपनों का वध कर दिया, बाप का भी कर दिया, उसको भी बंदी बना दिया, अपकार किया उसका भी। तो ऐसे हमें भी देखना है कि हम स्वयं का या बाप का अपकार तो नहीं कर रहे हैं, सो उपकारी बनना है, आज की मूल्य भी अपकार और उपकारी के ऊपर ही है। फिर चौथा था धुंधुकारी, धुंधुकारी अर्थात बहुत अत्याचारी, चोरी डकैती, दूसरों को तंग करना, ये सब की उसकी आदतों में शुमार हो चुका था। संग दोष उसके कारण उसने अपने परिवार को भी तहस नहस कर दिया। हम देखेंगे जितने भी आसुरी वृत्तियों वाले जो राक्षस हैं, इन्होंने सारे समाज में जैसे कोहराम मचा के रखा था, सारे समाज में हाहाकार मचा के रखा था, हर व्यक्ति को तंग करने की प्रवृत्ति थी अपना आधिपत्य जमाने के लिए, तो उसकी तरह हमारा जीवन ना हो जाए, सांसारिक सुखों में अपने जीवन को बिताना, वो ही एक जीवन का सार समझ लेना, उसको उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, तो ये सब चीज़ें जो हमारे पुरुषार्थ में बाधक हैं, अत्यंत घातक हैं, इससे हमको दूरी बना के रखनी है, इससे हमको परहेज करना है। पांचवा था हाँ जी बकासुर अर्थात जो ज़्यादा भोजन खाने वाला, जो रोज़ एक व्यक्ति की जान लेता था, तो अर्थात हम रोज़ अगर किसी एक व्यक्ति ने स्वयं की जान लेते रहते हैं, भगवान ने हमको ये जन्म दिया है जिसका हमें ज्ञान रत्न से श्रृंगार करना है, पालन पोषण करना है, क्योंकि ये साधारण जीवन नहीं है, संसार के लिए है, तो अगर हम दूसरे के जीवन में भी हस्तक्षेप करते हैं जिससे उसका जीवन नष्ट हो रहा है, अर्थात उसके समय को खा रहे हैं, हम अपने भी समय को भी नष्ट कर रहे हैं, उसकी स्थिति को डगमग कर रहे हैं, पुरुषार्थ करने का उसका टाइम है, उसको भी हम प्रभावित कर रहे हैं, तो जैसे हम एक जीवन को दांव पर लगा रहे हैं, तो हमें उस तरह से बकासुर नहीं बनना है। अगला था नींद और भोजन का जो प्रेमी था कुंभकर्ण, तो ये ब्राह्मण जीवन में दो बहुत बड़े ये एक कवच हैं, अगर इन पर नियंत्रण हो जाए दोनों चीज़ों पर, तो यात्रा बड़ी सुगम हो जाती है, और ये नियंत्रण स्वाभाविक रूप से परिणाम है हमारे पुरुषार्थ का, जहाँ पुरुषार्थ की तड़प होती है वहाँ नींद स्वतः कम हो जाती है, वहाँ भोजन पर नियंत्रण स्वतः हो जाता है, तो ये नींद और भोजन पर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। बाप का संसार के कल्याण के लिए चिंतन चलता रहता है, पूरी रात बाप को नींद नहीं आती है, इतने बड़े बड़े ख्यालात चलते रहते हैं, तुम बच्चों को भी ऐसा फिक्र होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए, बाप है कल्याणकारी, तुम बच्चों को भी बाप जैसा कल्याणकारी बनना है। फिर नेक्स्ट था सुरूपनखा। सुरूपनखा अर्थात जो साधकों को अपने सौंदर्य के ऊपर आकर्षित करने वाली थी। तो ऐसा ना हो इस साधना के पथ पर हमारी जो विचारधारा है केवल देह के इर्द गिर्द घूमती रहे, अर्थात हम अपने बाहरी पहनावे से दूसरों को आकर्षित करते हैं तो जैसे हम दूसरे के जीवन को भी नष्ट कर रहे हैं, फैशनेबल लाइफ जिसको शॉर्टकट कहेंगे। तो अपने पहनावे से दूसरों को आकर्षित करना या ज़्यादा फैशन करना, ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट था मंत्रा। मंत्रा अर्थात इधर की बात उधर, सारे परिवार को इकट्ठा करके रखना, किस रूप में, लड़ाई झगड़े के लिए सबको बिजी रख दिया उसने, व्यर्थ के संसार में सबको बिजी कर दिया। तो हमें उस तरह की लाइफ नहीं है, उस तरह से बिजी नहीं करना जो व्यर्थ के संसार में ही अपना जीवन दाव पर लगा दें। इसलिए बाबा कहते समाने की शक्ति चाहिए, जीवन में बातें आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन उन सबको हमको समा लेना है और उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। जो बाबा ने संडे की मुरली में स्लोगन दिया था, कौन सा स्लोगन था, गोल्डन गिफ्ट दी थी, शुभ भावना शुभकामना की गोल्डन गिफ्ट। तो सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना, मंत्र जैसा जीवन यापन नहीं करना है। उससे अगला कौन सा था, दसवां कीचक, नौवां कीचक, रविनेश भाई ने सुनाया था कीचक के बारे में, जरा समझे तो उधर है, आशीष भाई ने सुनाया था जरासंध के बारे में। तो कीचक अर्थात जो बुरी वृत्ति वाला है, बुरी दृष्टि वाला है, तो हमारी दृष्टि वृत्ति पग पग पर विचलित ना होती रहे। अगर हमारे पुरुषार्थ में ताकत बढ़ती जा रही है तो आत्मा में जो बल बढ़ता जा रहा है तो हमारा भी स्वयं की कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण अनुभव होना चाहिए, हमको कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि आंखों को बंद करके पुरुषार्थ नहीं करना है, आंखें तो खुली चाहिए लेकिन जो बाबा कहते हैं नेचुरल नेचर बन जानी चाहिए, कौन सी, आत्म की दृष्टि की। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, लंबे समय का अभ्यास करने के बाद ही थोड़ा कुछ रस हमारे हाथ में आएगा, लंबी यात्रा है, इसलिए हमको कीचक जैसा नहीं बनना है। नेक्स्ट था जरासंध। जरासंध अर्थात मन मत मेक्स, अर्थात वो बहुत शक्तिशाली था और या उसका जन्म भी दो व्यक्तियों से द्वारा हुआ था, अलग अलग आधा आधा ऐसे दो माह से जन्म हुआ था। तो ये सारे जो आश्रय वृत्ति वाले हैं ये दैवी संस्कृति को नष्ट करने के लिए थे। तो इस तरह के राक्षसों से हमें पूरा जागरूक रहना है, सावधान है, ताकि हमारी जो हम दैवी संस्कृति का पोषण कर रहे हैं, अपने संस्कारों को दिन प्रतिदिन पोषित करते जा रहे हैं, उन संस्कारों को ऐसा ना हो कि वो पोषण की वजह उनका शोषण होता जाए। नेक्स्ट है अगला किसका टर्न था, शकुनी मामा। शकुनी अर्थात षड्यंत्रकारी। किस लिए षड्यंत्र किया, कि सारी सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। उसी तरह से ब्राह्मण संसार में भी ऐसा ना हो कि हम अपना आधिपत्य जमाने के लिए, झूठ को सिद्ध करने के लिए, झूठ को सत्य साबित करने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहे, या अपनी कमी कमजोरियों को छिपाने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं, ताकि मेरी जो छवि है वो सबके सामने स्वच्छ दिखाई दे। हाँ जी, सिद्ध करने के लिए तो फिर उसको जिद करना पड़ता है। कहा जाता है सच जो है ना उसको तो एक बार ही बोल दे तो बोल दिया, और झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, षड्यंत्र रचने पड़ते हैं। तो इसी तरह हम जीवन में ऐसे षड्यंत्र ना रचें जिससे हमारा भविष्य दांव पर लग जाए और पूरा जो ब्राह्मण परिवार है, भले वर्तमान में थोड़े समय के लिए तो वाहवाह हो जाएगी, थोड़े समय के लिए मान सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन सफलता मिल जाएगी, लेकिन फ्यूचर हमारा खराब हो जाएगा और अब वर्तमान में भी खुशी नहीं रहेगी जो आंतरिक खुशी होनी चाहिए। तो तो देखना उस तरह के हमको षड्यंत्रों का निर्माण नहीं करना है। अगला किसका था? शकुनी के बाद दुर्योधन आया नहीं आज। दुर्योधन अर्थात धन का दुरुपयोग। धन का दुरुपयोग तो वहां तो एक स्थूल रूप से है, लेकिन यहाँ धन का दुरुपयोग अर्थात ज्ञान धन का दुरुपयोग। भगवान के महावाक्यों को ही हम अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग में लाते हैं, तो जैसे हम धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उस ज्ञान का मनन चिंतन, बाबा ने कहा एक एक पॉइंट का चिंतन करो, तो हर एक का चिंतन अपने अपने अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार होता है। अगर किसी एक बात पर कोई गहराई से चिंतन करता है तो उस चिंतन को काटने के लिए सामने वाला 10 बातें खड़ी कर देगा कि भगवान ने ऐसे भी कहा हुआ है। तो इस ज्ञान को समझना कोई साधारण बात नहीं है, टेढ़ी खीर है ये। तो ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म है ज्ञान। जितना हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी बुद्धि जो बताए बारीक हो जाएगी, सूक्ष्म हो जाएगी, उस ज्ञान को पकड़ने की क्षमता विकसित हो जाएगी। तो इस तरह से हमें ऐसा दुर्योधन नहीं बनना है जो हम इस धन का, चाहे स्थूल धन है चाहे सूक्ष्म धन है, उसका दुरुपयोग ना करें। नेक्स्ट था दुशासन। दुशासन अर्थात शासन का दुरुपयोग करने वाला, दूसरों का अपमान करने वाला। तो जो हम, जो बाबा कहते हैं निरंतर अपने सोमान की सीट पर बैठे रहो, ये भी हमको एक शासन मिला हुआ है, स्वयं का शासन, जो परसों के मूल्य में था स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा बनो। तो सारे दिन में अपना शासन छोड़ के ये देह रूपी जो हमको ये शासन मिला हुआ है, इस पर क्या हमारा पूरा अनुशासन रहता है? या दूसरों की देह पर ही हमारी सारी चेतना घूमती रहती है, सारी हमारी वृत्तियाँ उधरी चंचल होती रहती हैं। तो हम दुशासन अर्थात क्या? द्रौपदी की साड़ी खींचने वाला, अर्थात यहाँ भी हमारी जो चेतना है वो कहीं ना कहीं दूसरे की देह के इर्द गिर्द घूमना, अर्थात दूसरे के देह के प्रति लगाव, अट्रैक्शन। तो इस तरह का हमको दुशासन नहीं बनना है। नेक्स्ट था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप अर्थात प्रहलाद, प्रहलाद ही है ना उसका बेटा, जो भगवान से भी शत्रुता ले लेता है और बच्चे अपने पिता से, और प्रहलाद बच्चे को मारता है ना, वो तो होलिका को जलाता है हिरण्यकश्यप। तो परिवार में भी ऐसा नहीं कोई आगे बढ़ रहा है जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, उसके पुरुषार्थ में हम बिगन डालें, लेकिन जीत तो अंतिम सत्य की ही होती है। तो हमें किसी के पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ के मार्ग में बाधा नहीं क्रिएट करनी है। वो बाधा मुश्किल ही नहीं क्रिएट करते हैं, बल्कि अपने पुरुषार्थ को ही ख़त्म कर देते हैं, अपने आप को ही धोखा देते रहते हैं। नेक्स्ट था हिरण्यकश्यप के बाद, कौन था हिरण्यकश्यप के बाद? कालनेमी। कालनेमी अर्थात बहुरूपी बनकर दूसरे के काल को खा जाता है, समय को खा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, किसी की जान को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने गया, अर्थात सेवा में कोई जा रहा है और हम उसके बीच में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और उसके समय को नष्ट कर रहे हैं, और वो समय नष्ट करते तो किसी की जान जा सकती है, अर्थात कोई इस ब्राह्मण जीवन में हाथ छोड़ सकता है, तो उसका बोझ भी हमारे सिर पर चढ़ जाएगा। तो समय को नष्ट नहीं करना है। कालनेमी जैसे हमारे संस्कार नहीं होने चाहिए। और देखा है जितने भी राक्षस हैं ये सब किस रूप में धोखा देते थे? ऋषि के रूप में, ब्राह्मणों के रूप में, वेश बदल कर। तो वो कौन है? वेश तो हमारा ही बदला हुआ है, अंदर की वृत्तियां कौन सी हैं? अभी भी बाहर से तो हमने वेश बदल दिया है, बड़े अच्छे अच्छे हम तपस्वी लग रहे हैं, राजयोगी लग रहे हैं, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी लग रहे हैं, लेकिन अंदर की जो आश्रय वृत्तियाँ वो कौन सी हैं? वो ही कालनेमी, ताड़का और सर, ये शकुनी, ये सब चीज़ें वृत्तियाँ अंदर ही तो बैठी हैं, बाहर से तो हम ऋषि लग रहे हैं। तो हमें उस तरह का ये नहीं बनना है। नेक्स्ट था ताड़कासुर दिनेश। तो ताड़कासुर अर्थात ये सब दैत्य राक्षस हैं, ये दैत्य अर्थात दुर्गति करने वाले, दुख देने वाले। तो इस तरह के इन आश्रय वृत्तियों से हमको पूरी सावधानी रखनी है। नेक्स्ट था सुरूपना, पूतना, पूतना, हाँ डॉक्टर मनीषा जी, तो पूतना, पूतना भी क्या करती है, किसी को जान लेती है दूध पिलाकर। यहाँ भी अच्छा अच्छा भोजन खिलाकर हम किसी को कोई साधना करने आते हैं, समझ लो सेंटर में आते हैं, मधुबन में आते हैं, पुरुषार्थ के लिए आते हैं, तो हमें ऐसा नहीं कि उनके समय को नष्ट करें, उनके साथ हम बैठ के गपशप मारें। हम देखते हैं दूर दूर से आते हैं, कोई विदेश से आते हैं, तो हम अपने ऊपर जो हमेशा अटेंशन रखते हैं, सामने से हम किसी को नहीं बुलाते, क्योंकि सबका अपना अपना एक प्लान तैयार करके आते हैं यहाँ के लिए, और हम थोड़ा सा उस प्लान को चौपट करते हैं तो उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझा बन जाता है। इसलिए हम तो किसी को डायरेक्ट पहले ओम शांति भी नहीं करते हैं, नहीं तो वो बेचारा जो प्लान बना के अपनी साधना करने के लिए आया, उसमें हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दें और अपनी इच्छाएँ जाहिर करने लगें तो बहुत बड़ा बोझ हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए जो जिसके लिए आ रहा है पहले उसको वो करने दो, साधना करने दो। सेंटर में भाई बहन किसके लिए आते हैं, अपने जो घर के दुख दर्द है उनसे मुक्ति के लिए आते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आते हैं। तो भगवान के घर में आते हैं, सेंटर भी भगवान का घर है, मधुबन भगवान का घर है, यहाँ कोई भी आता है तो उसके टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जो वो साधना का प्लान लेकर आया है उसको फलीभूत करने के लिए हमको सहयोग देना है, अर्थात जितना हम दूसरे से दूरी बना के रखें उतना ही अच्छा है। हाँ, सामने वाले को कोई चीज़ की ज़रूरत हो या कोई चीज़ पूछनी, कुछ बात पूछनी हो, वो भले आए, लेकिन हम किसी के पास डायरेक्ट न आए। किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना जैसे ये पूतना जैसा है, तो हमको वो नहीं बनना है। नेक्स्ट है पूतना के बाद कौन था, मारीच मामा। तो मारीच अर्थात आकर्षण। इस अध्यात्म के पथ में ब्राह्मण जीवन में आकर्षणों की भरमार लगी पड़ी है, और दिन प्रतिदिन नए नए आकर्षण हैं जो कभी सोचते भी नहीं थे हम, वो सब नए आकर्षण आएंगे, चाहे वो साधनों के रूप में आ रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति के रूप में आ रहे हैं, चाहे वो भोजन के रूप में आ रहे हैं, चाहे वो घूमने फिरने के रूप में आ रहे हैं। ये सारे आकर्षण हमारी साधना को भंग करने वाले हैं, हमारी साधना की ताकत को कम करने वाले हैं, तो इन सब से हमको दूरी बना के रखनी है। नेक्स्ट था, आए नहीं आज, शिशुपाल जी। इस ब्राह्मण जीवन में हम कदम कदम पर, जैसे क्या होता था शिशुपाल गाली देता था, तो यहाँ भी हम कदम कदम पर गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती होती रहती है, फिर दाग पर दाग, दाग पर दाग पक्का बन जाता है, और एक बार दाग अगर गहरा लग गया उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कौन सी गलतियाँ होती हैं हमारे से, बार बार देह अभिमान में आने की गलती होती है, बार बार दृष्टि चंचल होती है उसकी गलती होती है, हाँ जी, नेगेटिव चिंतन, एक व्यर्थ सोचने की आदत ही बना रखी है कि व्यर्थ के बाहर निकलना नहीं है, चाहे वो स्वयं के प्रति सोच रहे हैं चाहे दूसरों के प्रति, जबकि हमारे संस्कार ही नहीं है, वो हमारा स्वभाव ही नहीं है। आज बाबा ने कहा तुम्हें अपना स्वभाव कैसा रखना है, मीठा, टेम्पर तुम्हारा मीठा होना चाहिए, लेकिन हम अपने स्वभाव को मीठा करने के बजाय दूसरे के स्वभाव को भी खराब कर देते हैं, दूसरे की अच्छाई में बुराई ढूंढ लेते हैं, इतनी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है, तो उल्टे को उल्टा, उल्टे को उल्टा कर देते हैं। तो बाप भी सर्वशक्तिवान है, बाबा कहते बच्चे भी इतने सर्वशक्तिवान हैं जो सर्वशक्तिवान बाप को अपने से अलग कर देते हैं। तो हमें ऐसा इस तरह का शिशुपाल नहीं बनना है जो हम गलती पर गलती करते जा रहे हैं, गलती पर, एक गलती से हमने धोखा खाया, फिर दूसरी गलती कर रहे हैं, फिर तीसरी गलती, गलतियों की बोझ, गलतियों की टोकरियाँ जैसे हमारे सिर पर हमारे जीवन को बोझिल करती जा रही हैं, फिर योग लगेगा कहाँ, फिर उसको स्वीकार भी नहीं करना, तो कितनी गलतियां हो रही है हमारे जीवन में। नेक्स्ट है इंद्रजीत। तो इंद्रजीत का भी देखा था हमने, वो इंद्रजीत क्या किया था उसका, इंद्रजीत का क्या, इंद्र का सिंहासन लेने के लिए तपस्या करते हुए, तो सब आसुरों ने तपस्या की दूसरों का आसन छीनने के लिए, दूसरे के आसन पर अपना कब्जा जमाने के लिए। तो हम किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करें, किसी के डिपार्टमेंट में या किसी के अपने घरेलू जीवन में, पारिवारिक जीवन में, नहीं तो उसे ब्राह्मण जीवन में आते हैं तो आप कहाँ से हैं, वहाँ से हैं, बस धीरे धीरे शुरू हो जाता है, आप भी महाराष्ट्र से, हम भी महाराष्ट्र से, है ना, फिर आपके परिवार में कौन कौन है, अच्छा हमारे परिवार में भी इतने हैं, वो सारी हमारी चेतना किधर चली जाती है, जो जानी चाहिए ऊपर की तरफ, इसी संसार में घूम रही है, फिर नए नए रिश्ते क्रिएट हो जाते हैं, फिर कुछ सालों के बाद वो अलौकिक से लौकिक में बदल जाते हैं, तो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, तो इस तरह से हमको पूरी सावधान रखनी है। और अंत में था रावण, तो रावण का काल तो संहार किया ही नहीं था वास्तव में। रावण का संहार कैसे, किसने किया था? राम ने, और किसकी मदद से? विभीषण की मदद से। तो इस तरह की आसुरी वृत्तियों का जो संसार है हमारे अंदर अभी भी है, ये हमको पहले स्वीकार करना है। अभी इससे मुक्ति के कैसे प्राप्त करनी है, इसके लिए हम 15 बातें देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो है एडिक्शन फ्री लाइफ। जो भी हमारी आदतें हैं, जो बताया गलती पर गलती करते जा रहे हैं, उन गलतियों की सूची निकालनी है कि सारे दिन में कौन कौन सी ऐसी गलती हो रही है जो बार बार हो रही है, बार बार हो रही है। चाहे वो देखने की है, चाहे वो किसी के साथ गपशप मारने की है, चाहे व्यर्थ सोचने की है। उन एडिक्शन से मुक्त होने के लिए हमको पहले लिस्ट बनानी, क्योंकि हमको अगर अपने एडिक्शन का पता नहीं है, उसको हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, तो हम उनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं वो हमको देखना है, खुद ही देखना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी हो सकती हैं। और वो आदतें हम दूसरों को बताते थोड़ा नहीं है, वो खुद ही हमारे पर हावी होती जाती रहती है। जैसे और आदतें कौन सी है, बीच में होता है इधर की बात उधर करना, या किसी का टाइम वेस्ट करना, या कोई चीज़ देखते रहना मंत्रा के जैसा। तो एडिक्शन फ्री लाइफ होनी चाहिए। दूसरा, अपने ऊपर कृपा करनी है। आज बाबा ने मुरली कहा, क्या वो कहा? कृपा आशीर्वाद वरदान उपकार। तो हमें अपने ऊपर ही कृपा करनी है। सबसे पहला रहम स्वयं के ऊपर करना है। अगर स्वयं पर हम कृपा नहीं कर पा रहे हैं, रहम नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं को वरदानी मूर्त नहीं बना रहे हैं, दूसरों को प्रदान कहाँ देंगे, दूसरों पर कृपा कहाँ करेंगे? वो संकल्प हमारा दूसरों पर काम करेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा खुद का संकल्प खुद के ऊपर ही काम नहीं कर रहा है, दूसरों पर कहाँ से करेगा। भले हम सोचते हैं मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, नहीं होगा वो, क्योंकि हम स्वयं का कल्याण करते जा रहे हैं। स्वयं ही मान शान की इच्छा, या स्वयं ही दूसरों के जीवन में कमी कमजोरियां देखने की प्रवृत्ति बन चुकी है। तो स्वयं पर कृपा कर करें, कहाँ करें? तो दूसरा है स्वयं पर कृपा करना है। तीसरा है क्लीन योर माइंड, अपने मन को स्वच्छ रखने की कुछ विधि ढूंढनी है, और वो है मनन चिंतन। कल की मुरली में शायद था, नहीं परसों जो शाम को चली मुरली, मनन चिंतन करना। मनन चिंतन हमारी मन बुद्धि को क्लीन करेगा, स्वच्छ करेगा। और जितना हमारा मन बुद्धि स्वच्छ होगा, बर्तन शुद्ध होगा, तो वो ज्ञान रतन हीरे मोती हमारी बुद्धि में ठहरने लगेंगे। नहीं तो ये थाली जो है, ये बुद्धि रूपी थाली, ये खाली की खाली रह जाएगी। उसमें वही मक्खी मच्छर जैसे विचार जो हमको स्वयं को भी काटेंगे और दूसरों को भी काटते रहेंगे। तो क्लीन योर माइंड। तीसरा है, चौथा है देही अभिमानी स्थिति। आज बावन का देही अभिमानी स्थिति ये सबसे बड़ी मंजिल है। इसको अचीव करना कोई साधारण बात नहीं है। तो बार बार बाबा कहते, जब भी इस सीजन के मूल्यों में देखा होगा, अधिकतर बाबा ने जो ड्रिल की प्रैक्टिस कराई इस शरीर से डिटैच होने की, एक सेकंड में देह से परे, तो वो बार बार हमको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि विकारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देह अभिमान से होती है। तो अगर हमारा देही अभिमानी करने का अभ्यास पड़ जाए और वो नेचर हो जाए, तो धीरे धीरे देह अभिमान की आसक्तियाँ वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएंगी। उनसे हमारा लगाव, उनसे अटैचमेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। नहीं तो दिन प्रतिदिन हमारी जो चेतना है, हमारा जो विचार है, वो सारा देह के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो चौथा है देही अभिमानी स्थिति का हमको बार बार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है आई कंट्रोल, अपनी आंखों पर नियंत्रण। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी धोखेबाज कौन है? ये आंखें हैं। तो इन आंखों का भी शुद्धिकरण करना है। अब इन आंखों को तो बताया ना, बंद तो कर नहीं सकते हैं। अब इन आंखों का कैसे शुद्धिकरण, ये हम सबको देखना है। क्योंकि देह दिखाई देता है, तो देह को बाबा ने क्या कहा? देह सांप की तरह है। तो देह के बारे में बाबा ने जो चिंतन दिया हुआ है, जो महावाक्य उच्चारित किए हुए हैं, उनका चिंतन करना, उनका चिंतन करने मात्र से हम देह अभिमान से मुक्त हो जाएंगे। उससे नुकसान होने वाला क्या है, वो भी हमको देखना है। देह की वास्तविकता क्या है, उससे भी हमको भली भांति परिचित होना है। देह से हमको कौन कौन से दुख मिला है, उसका भी हमको, उसका भी चिंतन करेंगे, तो धीरे धीरे हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या करना है? आई कंट्रोल, अपनी आंखों का शुद्धिकरण करना है। इन आंखों से दूसरों की कमी कमजोरियाँ देखने के बजाय दूसरों की विशेषताओं को ढूंढना है। और सबसे पहले तो बताते हैं कि अपनी विशेषताओं को देखना है। जब तक हम अपनी विशेषताओं को नहीं देखेंगे, दूसरों को भी नहीं दिखाई देंगे। तो वास्तव में सारा काम तो स्व परिवर्तन के ऊपर ही है। इसलिए क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हमें दूसरों को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः होंगे। जब हमारे स्व परिवर्तन की परछाई दूसरों पर पड़ेगी, वो स्वतः ही उस परछाई का अनुभव करेंगे, उनके जीवन में परिवर्तन के लिए अपने आप संकल्प चलेंगे, हमें संकल्प किसी को देने की जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा चलता फिरता जीवन कैसे सैंपल है, ब्रह्मा बाबा का जीवन बताया ना संडे की मुरली में, सैंपल है वो। कौन सी बातों में बताया था सैंपल? कर्म के लिए, जन्म धर्म कर्म, जन्मदाता और धर्मदाता कौन है, स्वयं निराकार स्थापक, और कर्म बाबा बनता है ना भाग्य की कलम ही कर्म है, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया। तो हमारे जो जीवन है ये चलता फिरता दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। तो कौन सी बात बताई थी, आई कंट्रोल। नेक्स्ट है फूड, भोजन। पीछे 21 दिनों की भट्टी में, पिछली 108 दिनों की भट्टी में देखा था, और 21 दिनों की भट्टी में 2 दिन के लिए रसा रखा हुआ था, ये सबने अनुभव किया हुआ है किया होगा। भोजन का इस जीवन ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इस भोजन को हमको युक्तियुक्त तरीके से और बड़े निष्ठा से, बड़ी सच्चाई सफाई से, स्वयं के पुरुषार्थ में निखार लाने के लिए पूरी सोच समझ के साथ इसको अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि भोजन एक जैसे संकल्प है, भोजन का एक एक निवाला जैसे हम अपने मन को संकल्प दे रहे हैं, तो जितना हम लिख लेते हैं, देखा हमने पचाने की ताकत कम लगती है, हल्के रहते हैं, एनर्जी रहती है, बहुत सारी क्लासों में बहुत सारी बातें सुनी हैं, तो धीरे धीरे उस पर जाना है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। नहीं तो कई बार ये भी देखा उसको, कई बार नेगेटिव परिणाम भी बहुत सामने आए हैं, बिना सोचे समझे तीनों टाइम लगातार रसार कर दिया तो शरीर ही जैसे गिर गया, और सारा समाज जैसे उनके लिए दुश्मन हो गया एक हिसाब से। तो हमको बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है, जोश में नहीं होश के साथ करना है। तो भोजन जितना हम लिक्विड लेंगे और अपने अपनी सुविधा अनुसार, सप्ताह में 2 दिन रखो, नहीं तो 3 टाइम की जाए, 1 टाइम लिक्विड लो और 1 टाइम सॉलिड, और शाम को थोड़ा हल्का ले लो, धीरे 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 करना जरूरी है, ये अपनी समझ के साथ करना है। सबसे मुख्य बात है, जो हम करते हैं वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक का शरीर अपने अपने, प्रकृति अपनी अपनी, व्यवस्थाएं सबकी अपनी अपनी, परिवार समाज सबका अपना अपना है। हाँ जी, हाँ सबके अलग अलग हैं, बीमारियां अलग अलग हैं सभी, और तुरंत हम उसको कर दें तो कईयों को तो उस बीमारियां का उनसे शफा भी मिल जाता है, और कईयों की बीमारियां भी बढ़ गई, उल्टा हो गया। तो सब अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है, समझ के साथ करना है। तो क्लास में सबसे पहले दिन में यही बताया था कि सब चीज़ सोच समझ के करनी है, जो यहाँ बताई जा रही है उसको मानना नहीं, उसको पहले सोचो समझो, उस पर विचार करो, उस पर मंथन करो, अपनी बुद्धि चलाओ। हाँ जी, अपने विवेक का कुछ लाओ, नहीं तो अपने अपने विवेक का खून कर दिया हुआ है। तो कहाँ थे, भोजन पर, भोजन कर लिया ना सबने, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुड विशेज, शुभ भावना, शुभ कामना। तो अपने प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है कि मैं अपने प्रति कितना अच्छा सोचता हूँ। ऐसा तो नहीं कि सारे दिन मैं अपनी कमजोरियों के बारे में सोच रहा हूँ, अपनी कमजोरियों की जंजीर में जकड़ा हुआ हूँ, नहीं, अपनी विशेषताओं का भी चिंतन करना है और उन विशेषताओं को कार्य में लगाना है। नेक्स्ट है, हाँ जी, एच, अच्छा जी एच, हाँ जी से हो गया ना, होल्डिंग नेचर, किसी की बात को पकड़ के नहीं रखना है। किसी ने हमने को थोड़ा छोटा मोटा बोल भी दिया तो सारा दिन हमारी बुद्धि उसके उसको पकड़ के बैठ जाती है, अरे बोल दिया तो बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है। घर में भी तो माँ बाप कुछ ना कुछ तो बोलते ही है ना, हम उसमें बुरा मनाते थे जब हम छोटे बच्चे होते थे, माँ बाप कुछ बोलते तो हमारे हित के लिए कहते थे। तो इस ब्राह्मण जीवन में अगर हमको कुछ कहता भी है तो हमारे हित के लिए ही है, अगर कोई बुरा भी कह रहा है तो हमारी मनोस्थिति को मजबूत करने के लिए। तो हमको उस बात को पकड़ के नहीं बैठना, होल्डिंग नेचर नहीं बन जाना। हाँ, होल्डिंग नेचर वो बनना जो भगवान के माँ बाप के, उनको पकड़े रखो तो हमारे, ताकि हमारा बेड़ा पार हो सके, नहीं तो छोटी छोटी बातों में हमारा जीवन सारा, हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है। नेक्स्ट है सॉरी कर देना, जो भी हमारे से गली कमी कमजोरियाँ या गलतियाँ होती हैं तो भगवान के आगे या सामने किसी से हमारी थोड़ी भी बातचीत हो जाती है तो सॉरी करने से हमने देखा हमारा पुरुषार्थ निर्विघ्न हो जाता है। नहीं तो अहम ऐसा है, आई अर्थात मैं ऐसा है जो हमको आगे बढ़ना नहीं देता है। एक छोटा आई और एक बड़ा आई, तो आई अर्थात अहंकार मैं को नष्ट करने के लिए जहाँ भी हमारा आपस में मन मुटाव होता है वहाँ सॉरी कर दो, क्षमा मांग लो। आई के प्रधान में स्लोगन में ही है या कल था, क्षमा भूल गया था सही कभी ना कभी क्या था ये पता नहीं। नेक्स्ट है जिज्ञासु वृत्ति को बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि इस ज्ञान में हमने सीख लिया सब कुछ, बहुत कुछ सीखना बाकी, अभी तो कुछ भी सीखा ही नहीं है। इतनी जो 108 के दिनों में भर्ती में जो नई नई बातें मिली ये हमको पता थी, कुछ पता नहीं था कौन किसके मुख से कब क्या निकल जाए, तो ये हमको और वो बात हमको हमारे पुरुषार्थ को बहुत आगे लेके चली जाएगी। तो हमको हमेशा जिज्ञासु वृत्ति बना के रखनी है, सीखना है। नेक्स्ट है कर्म सिद्धांत की स्मृति को कभी नहीं भूलना है। जो कर्म हम कर रहे हैं हमको देख के सब कर रहे हैं, और वो कर्म का प्रभाव सबसे पहले तो हमारे ऊपर ही पड़ता है, चाहे वो हम नेगेटिव रूप से कर रहे हैं चाहे पॉजिटिव रूप से कर रहे हैं, वो कर्म हमें फल तो अवश्य देगा। चाहे वो संकल्प से हम कर रहे हैं, चाहे बोल से कर रहे हैं, चाहे वो कर्म स्थूल रूप से कर रहे हैं, तो कर्म सिद्धांत की स्मृति हमको बनाकर रखनी है। नेक्स्ट है लव, परमात्म प्यार को बढ़ाना है। और परमात्म प्यार को बढ़ाना अर्थात परमात्मा की जो बाबा की जो श्रीमत है उस श्रीमत का अनुसरण करना ही उसके प्रति हमारा प्यार बढ़ेगा। मुरली से प्यार बढ़ाना अर्थात मुरलीधर से हमारा प्यार बढ़ेगा, उसकी सेवाओं से प्यार अर्थात बाबा से प्यार, उसके परिवार से प्यार अर्थात बाबा से प्यार, उसके यज्ञ से परिवार अर्थात भगवान से प्यार, उसके सेवा केंद्र से प्यार अर्थात बाबा से प्यार, तो प्यार को बढ़ाना है। नेक्स्ट है मौन की प्रैक्टिस, साइलेंस की प्रैक्टिस, जितना हो सके हम व्यर्थ से किनारे रहें और अपने मन को मौन अर्थात नेगेटिव चिंतन से मुक्त रखें, पॉजिटिव चिंतन में जितना हम डुबो के रखेंगे उतना हमारा सामर्थ्य ताकत बढ़ती जाएगी और हमारी आंतरिक क्षमता का विकास होता जाएगा। नेक्स्ट है नो कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं करनी है, ये ऐसा है वो वैसा है हम कैसे हैं हमको ये देखना है, नहीं तो सारे दिन जो चित्त है शिकायतों से भर रहता है, कंप्लेंट ही कंप्लेंट और जो चित्त शिकायतों से भरा कंप्लेंट से भरा कंप्लीट कब बनेंगे, तो शिकायतों से नहीं है, किसी से शिकायत नहीं करनी है, कोई शिकवा नहीं कोई शिकायत नहीं, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, सब अच्छे हैं, सब अपना अपना पार्ट बखूबी निभा रहे हैं। और नेक्स्ट है लास्ट में 15वां पॉइंट, पवित्रता को बढ़ाना है। और पवित्रता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, योग का प्रयोग करेंगे, निरंतर पवित्रता के सागर की छत्रछाया में बैठे रहना है। तो ये सारे 15 पॉइंट थे जिससे हम अपने जीवन को इस भट्टी के सार का रस अनुभव कर सकें, नहीं तो ये कहीं यहाँ तक ही सीमित न रह जाए। भट्टी तो वास्तव में करने के बाद चालू होती है, तो आज ये भट्टी यहाँ संपन्न हुई और कल से जो दूसरी भट्टी चलेगी 108 दिन की चलेगी और उस भट्टी का नाम है विजयी भव। और ये तो मोटे रूप से आश्रित वृत्तियों का सहार करने का सभी ने प्रयास किया। अभी नेक्स्ट है उसके बाद में जो कल से चलेगा विजयी भव, 108 विकारों पर जीत, ये 108 विकारों पर जीत की यात्रा है। तो इसके 3-4 क्राइटेरिया रहेंगे, चार बातों पर आधारित जो भी आगे भट्टी चलेगी। जैसे पहला है काम विकार, ये काम विकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। बचपन में हम सुनते थे कि काम क्रोध लोभ अहंकार ये शत्रु हैं, तो हमको तो पता नहीं था, हमने बोला काम तो हम तो दिन भर काम ही करते रहते हैं, तो ये शत्रु कैसे हैं हमारे, इसके बिना हमारा गुजारा कैसे होगा। ये तो बाद में बड़ा होने के बाद पता चला काम होता क्या है, नहीं तो पहले काम को हम वही समझते रहे। तो काम की परिभाषा क्या है ये हमको देखना है, सबसे पहला होगा इसका परिभाषा। दूसरा है बाप दादा के संबंधित महावाक्य, काम से संबंधित बाबा ने कौन कौन से महावाक्य उच्चारित किए हैं, उनको एकत्रित करके उस पर चिंतन करना और उस चिंतन को यहाँ सबके सामने रखना है। तीसरा है किन किन परिस्थितियों में ये उभरता है, जैसा काम है तो कौन कौन सी परिस्थितियों में काम हमको उत्तेजित करता है, उभरता है, हमारे मन को चंचल करता है, विचलित करता है, बुद्धि को भटकाता है, कर्मेंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये देखना है कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ सारे दिन में आती हैं। चौथा है इस पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, तो ये चार तथ्यों पर आधारित रहेगा टॉपिक। तो कल है काम, ये विकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, बाप दादा की संबंधित महावाक्य, किन किन परिस्थितियों में ये उभरता है और इस पर विजय कैसे प्राप्त करनी है। तो ये कल से 108 विकारों पर जीत की यात्रा होगी और इस पर कुछ और भी अपना अपना एक नियम बना सकते हैं। जैसे भोजन का बीच में था कि सप्ताह में 2 दिन, तो इन 108 दिनों के दौरान भी भोजन के ऊपर नज़र पूरी रखनी है और अपने अपने तरीके से बताया, जैसे जितना हो सके भोजन को रसाहार के रूप में, चाहे वो कच्चा है चाहे वो पक्का है, जितना उसको लिक्विड करेंगे उतना हमारी साधना के लिए एक अमृत की तरह काम करेगा, वो संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। लिक्विड जो है हमारे विकारों को ख़त्म करने का जैसे एक शस्त्र है, धारदार शस्त्र है, लेकिन ये हमको स्वयं ही प्रयोग करना है, नहीं तो सुनने सुनाने तक ही सीमित रह जाएगा। तो जहाँ भी हम रहते हैं अपनी अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए धीरे 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 धीरे, जैसे आज बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, चूहा क्या करता है, फूंक मार के काटता है, तो उसी तरह से अपने आप को भी चूहा बना के अपनी जो एडिक्शन है इनको काटना है। और उसका क्योंकि जो भी यहाँ रिसर्च किया गया वो ऐसे वैसे नहीं किया गया, अनेक भाई बहन अभी भी उसका उपयोग कर रहे हैं समझ के साथ, जो समझ के साथ कर रहे हैं जैसे वो पुरुषार्थ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और वो तो सफल हो रहे हैं, और जिन्होंने बिना अंडरस्टैंडिंग के किया, बिना समझ के साथ जोश में आकर कर दिया, उनके लिए वो भारी पड़ गया है और वो कई तो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए और उसके लिए फिर दूसरे बड़ों से भी राय लेते हैं कि हमको लिक्विड भोजन करना चाहिए, तो सीधा बड़े कहते हैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ कोई भी बताते हैं क्लास में कि कोई डायरेक्ट बताते हैं, क्योंकि जिसने अनुभव नहीं किया वो तो ऐसे बताएंगे। तो हमको बड़ी समझ के साथ करना है, क्योंकि बता कौन रहा है वो, जिसको हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी है, अगर हम उसको बताएं तो माना जा सकता है कि ये खराब बात। अब डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर को सारा कुछ मालूम है, उन्होंने पूरी जिंदगी शरीर के ऊपर रिसर्च करने में लगा दी है कि कौन सी शरीर के जो सारी कर्मेंद्रियाँ हैं, जो शरीर की नाड़ियाँ हैं कैसे काम करती हैं, वो डॉक्टर चिकित्सक बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो जो भी सारी रिसर्च की गई है, लिक्विड से आए, फ्रूट पर आए हैं, रसा वही प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है। तो जो 108 दिनों की पूरी भट्टी थी, जिसको अगर करना है तो वो शुरू से लेकर क्लास को सुनना है और पूरी समझ के साथ करना है, तुरंत नहीं करना है, नहीं तो बाहर डॉक्टर सचिन भाई पूछने नहीं जाएंगे, उन्होंने तो बता दिया, इधर पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। इसलिए डॉक्टर सचिन भाई ने बार बार कहा समझ के साथ करना है, धीरे धीरे करना है, तो ही हमको इसका लाभ मिलेगा। और उसका परिणाम क्या होगा, डिटॉक्स जो हमारे विकृतियाँ हमें पकड़ में आएंगी, बाहर निकलेंगी, उनको छोड़ने की ताकत आएगी, और नींद कम, नींद और भोजन ये हमारे दो मुख्य एक शस्त्र हैं इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा में, साधना की यात्रा में, जिन पर अगर हमारा कंट्रोल है, नियंत्रण है, तो हमारी साधना दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी, नहीं तो बिखरती जाएगी। तो हम हाँ जैसे बच्चे बाप की भी निंदा कराते हैं, ऐसे जो क्लास कराने हैं उनकी भी निंदा करा देते हैं। तो हमको देखना है सूक्ष्म रूप से हमारे मन के ऊपर ऐसे पापों का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ना जाए, बड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और ये धीरे धीरे पकड़ में तब आएगा जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी। तो अपनी समझ के साथ, तो जितना हो सके सप्ताह में जो 2 दिन बताए थे, फ्राइडे और मंडे, 2 दिन अगर लिक्विड पर पूरा दिन रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सवेरे के टाइम में टोटल लिक्विड कर दो, दोपहर के टाइम में एक ही टाइम भोजन करो। कई बार तो हमने देखा, पहले भी कई बार बताया, ये बाजू में एक मकान है, एक बुज़ुर्ग रहता है, 93 एज है उनकी अभी, एक सारे दिन में केवल एक ही टाइम भोजन करता है वो, सवेरे तक कुछ नहीं, सवेरे के दोपहर के टाइम में भोजन करेगा और शाम को दूध लेता है बस, ब्रह्मा के टाइम के हैं बाहर के। तो ऐसे संसार में भी लोग हैं, और हमने देखा कभी उसको बीमार भी नहीं देखा, चलता फिरता एकदम हिलद। अभी कुछ दिन पहले एक ओम शांति मन में एक बुज़ुर्ग आए थे टूरिस्ट के टाइम में, तो 94 ईयर एज, एकदम हटे कटे एकदम अच्छी हो। तो हमने उनको पूछा तो बोला सवेरे के टाइम में मैं केवल दोपहर तक 12 बजे तक फ्रूट ही लेता हूँ और एक टाइम भोजन करता हूँ। तो संसार में भी हेल्थ के प्रति कितनी जागरूकता है, और कितने एकदम उनमें चुस्ती फुर्ती देखने लायक बनता हो। तो हम तो भगवान के बच्चे हैं, हमको सारी समझ मिल रही है, अनेक भाई बहन हमें मार्गदर्शक बनकर हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के भगवान ने निमित्त बनाए, तो हमको सबसे फायदा लेना है। जो इस जीवन में पुरुषार्थ नहीं भी कर रहा उससे भी हमको सीखना है, तो हर इसके हम सुख सीखना है। कैसे
पुरुषार्थ ना करते हुए खुश कैसे रहें, वो भी है। खुश रहते एकदम हल्के रहते हैं, पुरुषार्थ करने वाले टेंशन में रहते हैं, देखते हैं हम चेहरे में बार बार टेंशन है, और जो नहीं करे वो मौज से जी रहे हैं, तो उनसे भी सीखना बनता है हमको, आनंद ले रहे हैं जीवन के। तो इस जीवन का हमको रस अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।
साधना से ध्वस्त हो जाई अनेक।